एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Hallelujah।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, आपके सामने फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों से सुन सकते हैं। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो जो तेरे वचन को सुनते हैं, उन्हें सुनने के लिए और समझने के लिए मदद कर, उन्हें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला और विशेषकर मेरे संग हो पिता, मुझे तेरा सामर्थ्य दे ताकि तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तेरा वचन को प्रस्तुत कर सकूं जो सबके लिए आशीष लाए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। मेरा आज का संवाद का शीर्षक है हन्ना और कैफा की कचहरी में। हन्ना और कैफा की कचहरी में यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को गतसमनी बगीचा में रोमी लोगों को पकड़वा दिया था, उसे चूम करके उसे पकड़वाया और उसके बाद उसके सब चेले उसके जगह से भाग करके तितर बितर हो गए। फिर किद्रोन के नाले से होते हुए बाग को पार करके जैतून के बगीचे में से होते हुए रात के सोते हुए नगर की सड़कों पर यीशु को लेकर जल्दी जल्दी लोग जाने लगे। यह आधी रात के बाद का समय था और जो भीड़ उसे घेरे हुए चल रही थी वह बहुत ही हुड़दंग मचा रही थी। उस सन्नाटी रात में उनकी आवाजों चारों ओर गूंज रही थी। मुक्तिदाता बंधा हुआ था और उसके अगल बगल चौकसी रखने वाले घेरे हुए थे और वह बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहा था। उसको पकड़ने वाले लोग बहुत ही जल्दीबाजी करके उसे लेकर हन्ना के महल को ले गए जो एक भूतपूर्व महायाजक था। हन्ना उस समय के याजकीय परिवार का मुखिया था और बढ़ती आयु तथा अधिक अनुभवी होने के कारण अब भी लोग उसे महायाजक का सम्मान देते थे, उसे सलाह मांगते थे और जो सलाह वह देता था उसे वे सब परमेश्वर का वचन मानकर स्वीकार कर लेते थे। पहले तो वह यीशु को याजकीय शक्ति के कैदी के रूप में देखे। कैदी की जांच पड़ताल के समय वह अवश्य उपस्थित रहे क्योंकि उन्हें डर था कि कम अनुभव वाला कैफा शायद उनकी इच्छा के अनुसार काम ना करे। इसलिए हन्ना की धूर्तता, कपटता और चतुरता का उपयोग इस अवसर पर करना चाहते थे ताकि किसी भी तरीके से मसीह को दोषी ठहरा कर दंडित कर सकें। वास्तव में तो मसीह का मुकदमा महासभा के सामने होना चाहिए था, परंतु पहली नजर में दोषी ठहराने के लिए हन्ना की अदालत में पेश किया गया था। रोमी शासन के कानून के अधीन यहूदी महासभा को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। वे केवल कैदी की जांच पड़ताल करके उसके दोष के अनुसार दंड निर्धारित करके उसकी मंजूरी के लिए रोमी शासन के सक्षम अधिकारी के पास भेज सकते थे। मसीह ने एक खुली किताब की तरह याजकों के उद्देश्य को पढ़ लिया, जैसे कि अपने प्रसन्न करने वाले के हृदय में बैठकर पढ़ रहा हो। उसने अपने तथा अपने अनुयायियों के बीच किसी गुप्त समझौते या किसी गुप्त स्थान पर उन्हें इकट्ठा करके कोई गुप्त षड्यंत्र रचने से साफ साफ इनकार किया, क्योंकि उनकी शिक्षाओं या उद्देश्यों में कोई छिपाने वाली बात थी ही नहीं। मसीह ने उससे कहा, मैंने जगत से खोलकर बातें की, मैंने सभाओं और आराधनालय में जहां सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं किया है। मुक्तिदाता ने अपनी कार्य पद्धति और उस पर आरोप लगाने वालों की कार्य पद्धति के तरीके के अंतर को उन्हें बताया। महीनों से वे लोग उसकी तलाश कर रहे थे, दिलो जान से लगे हुए थे कि किसी भी तरह से अपने धर्म सभा की गुप्त बैठक में मसीह को ले आए ताकि जो कुछ सच्चे न्याय से हासिल नहीं कर सकते थे वे इस धोखेबाजी से प्राप्त कर लें। और अब वे लोग अपने उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहे थे। आधी रात को भीड़ द्वारा पकड़ लेना, इससे पहले कि वह दोषी ठहरे, उसकी हंसी उड़ाना, ठट्ठा करना और उस पर आरोप लगाना, यह सब उन्हीं लोगों का तरीका था, मसीह का नहीं। उनका यह कार्य कानून के विरुद्ध था। उन लोगों का कानून भी यही कहता था कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध साबित ना हो जाए तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता था। अपने ही कानूनों द्वारा याजक अपराधी ठहरते थे। अपने प्रश्न करने वालों को संबोधित करते हुए यीशु ने कहा, तू मुझसे क्यों पूछता है? क्या याजकों और अधिकारियों ने उसके पीछे जासूस नहीं लगा दिए थे कि उसकी प्रत्येक गतिविधि को देखते रहे और उसकी सभी बातों की सूचना उन्हें दे? क्या ये लोग हर एक सभा में लोगों के बीच उपस्थित नहीं रहते थे और उसके सभी कार्यों और उपदेशों की सूचना याजकों को नहीं पहुंचाते थे? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। यीशु के उत्तर से हना चुप हो गया। उसको डर हो गया कि यीशु कहीं उन बातों को भी ना खोलकर रख दे जिन्हें वह गुप्त रखना चाह रहा था। इसलिए उस समय उसने मसीह को कुछ और अधिक नहीं कहा। एक अधिकारी हन्ना को चुप रहते देखकर गुस्से से भर गया और यीशु के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोला, क्या तू महायाजक को इस प्रकार से उत्तर देता है? शांतिपूर्वक मसीह ने उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? उसने उसे उत्तेजित करने वाली कोई बात नहीं कही। उसका शांत उत्तर एक निष्पापी, धीरजवंत और सज्जन पुरुष के हृदय से निकला हुआ वचन था जो किसी को भी कभी क्रोधित नहीं कर सकता है। बड़ी बुरी तरह से अपमान और गाली को मसीह ने सहन किया। जिन हाथों का वह सृष्टि करता था और जिनके लिए वह असीम बलिदान देने जा रहा था, उन्हीं से वह हर तरह का अनादर प्राप्त कर रहा था। और जितने ही वह पवित्र था, पाप से घृणा करता था, उसी अनुपात में वह क्लेश भी उठा रहा था। दुष्ट और अपराधी मनुष्यों द्वारा उसे पूछताछ किया जाना उसके लिए प्रतिदिन की मृत्यु के समान लग रहा था। शैतान के वश में हो गए मनुष्यों द्वारा लगातार उसे चारों ओर से घेरे रहना उसके लिए राजद्रोह के समान था। और वह जानता था कि एक क्षण में उसके ईश्वरीय सामर्थ्य के प्रयोग करने से उन तमाम अत्याचारियों को धूल में मिला सकता है। इस कारण से उससे पूछताछ करने को सहन करना उसे बहुत कठिन लग रहा था। यहूदी लोग बाहरी दिखावे के रूप में मसीह के प्रकट होने की आशा कर रहे थे। उन्हें यह उम्मीद लगी हुई थी कि वह एक ही क्षण में संसार के चित्र को बदल डालेगा, मनुष्यों के विचारधारा में बदलाव कर देगा और लोगों को मजबूर कर देगा कि वे उसे महान शक्तिशाली स्वीकार करें। स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत अपने प्रिय सेनापति के साथ हो रही प्रत्येक घटना को देख रहे थे। उन्होंने चाहा कि मसीह को उनके हाथों से छुड़ा ले। परमेश्वर के अधीनस्थ स्वर्गदूत हर प्रकार की शक्ति से परिपूर्ण थे। मसीह के एक संकेत पर उसके आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने एक रात को अशूर की 185,000 की सेना का वध कर डाला था। तो मसीह के साथ पूछताछ करने के ऐसे घिनौने व्यवहार को देखकर वे स्वर्गदूत अपनी वफादारी दिखाने के लिए परमेश्वर के विरोधियों को खाक में मिला दिए होते, परंतु उन्हें ऐसा करने के लिए आदेश नहीं दिया गया था। वह जिसने अपने दुश्मनों को मौत की गोद में सुला दिया होता, उनके अत्याचार को सह रहा था। इंसानियत को बचाने के लिए केवल एक ही आशा बची रह गई थी कि मसीह पूर्ण रूप से और सब कुछ मनुष्यों के हाथों में सौंप दे और मनुष्य के रूप में सारे दुख सहे। इसी से वह हमें उद्धार कर सकता है। अपने ऊपर आरोप लगाने वालों से मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वे उसका गलत लाभ उठा सके। इन कारणों से याजकों और अधिकारियों ने फैसला कर लिया कि इससे पहले कि उनके उद्देश्य का भंडाफोड़ हो जाए, अवश्य ही यीशु को रोमियों के हाथ में सौंप देना चाहिए। परंतु सबसे पहले मसीह में कोई दोष ढूंढना जरूरी था और अभी तक वे इसमें सफल नहीं हो सके थे। हन्ना ने आदेश दिया कि यीशु को कैफा के पास ले जाया जाए। कैफा सदूकियों में से एक था, जिनमें से बहुत से ऐसे थे जो मसीह से घोर दुश्मनी रखते थे। कैफा भी हन्ना जैसे ही हृदयहीन और कठोर स्वभाव का था। वह मसीह को मिटा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह होने वाली थी, अभी भी चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। लालटेन और टॉर्च की रोशनी में अपने कैदी को लेकर भीड़ महायाजक के महल की ओर चल पड़ी। महासभा के सदस्य यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। हन्ना और कैफा यीशु से फिर प्रश्न पूछने लगे, परंतु वे उसमें सफल ना हो सके थे। जब महासभा के सदस्यगण न्यायालय कक्ष में एकत्रित हो गए, तो कैफा सभा अध्यक्ष की कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसके दोनों ओर न्यायाधीश, विशेषकर जिनकी दिलचस्पी मसीह के मुकदमे में थी, बैठे हुए थे। कैफा यीशु को अपना प्रतिद्वंदी समझता था। मुक्तिदाता के उपदेशों को सुनने की लोगों की ललक और खुशी के साथ उसकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लेने की चाह ने महायाजक के मन में यीशु के प्रति डाह पैदा कर दिया था। परंतु वह इस समय अपने मन से इस भावना को निकाल फेंका और मसीह का उपहास करते हुए बोला, हमारे सामने अपने महान चमत्कार को दिखला। हन्ना और कैफा के उत्तेजना और ईर्ष्या भरे व्यवहार तथा यीशु के शांत चित व्यवहार और सहन शक्ति की आपस में लोग तुलना करने लगे। उसमें बहुत अंतर थी। यहाँ तक कि कठोर हृदय वाले लोग के मन में भी यह प्रश्न उठने लगा, क्या यह सीधा साधा सजनता से भरा मनुष्य अपराधी हो सकता है? कैफा ने अनुमान लगाया कि लोग यीशु से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए जांच के काम को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की सोच लिया। यीशु के दुश्मन बड़ी उलझन में पड़ गए थे। सदूकी और फरीसी सदा ही एक दूसरे के विरुद्ध तलवार खींचे रहते थे। लोगों को रिश्वत देकर गवाही देने के लिए तैयार किया गया था कि यीशु विद्रोह फैलाने के लिए लोगों को भड़काया करता है ताकि अलग से अपना राज्य स्थापित करे, परंतु उनकी गवाही एक दूसरे से नहीं मिल रही थी, एक दूसरे के विपरीत और संदेह भरी हो थी। सवाल जवाब के समय वे अपनी ही झूठ में फंसे जा रहे थे। अपनी सेवकाई के आरंभिक काल में मसीह ने कहा था, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। भविष्यवाणी की प्रतीकात्मक भाषा में उसने अपनी मृत्यु और जी उठने की बातें कही थी। उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, जिसे हम यूहन्ना 2:19-21 में पाते हैं। कैफा दांत पीसते हुए बोला, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? अंत में लोग यीशु मसीह के विरोध में उस मंदिर को ढा देने और फिर से खड़ा करने के बात करने के विषय को लाए। यीशु शांत खड़ा रहा। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला, यशायाह 53:7। और अंत में कैफा अपने दाहिने हाथ को ऊपर आकाश की ओर उठाते हुए एक शपथ के रूप में यीशु से कहने लगा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। इस अनुरोध पर मसीह चुप नहीं रह सका। चुप रहने का एक समय होता है, वैसे ही बोलने का भी वह समय आ गया था। जबकि सीधे उसे उस विषय की सवाल नहीं किया जाता, तब तक वह चुप था। वह जानता था कि इस विषय पर वह चुप नहीं रह सकता है। अब इस समय उसका उत्तर देना उसकी मृत्यु को निश्चित कर देगा। परंतु महायाजक द्वारा पूछा गया प्रश्न यहूदी जाति के सर्वोच्च अधिकारी द्वारा परमेश्वर के नाम पर पूछा गया था। मसीह आज्ञा के प्रति सम्मान दिखाने में कोई कोताही नहीं दिखलाया, और इससे भी बढ़कर उसने अपने पिता के साथ के संबंध का प्रश्न किया गया था। उसने साफ साफ अपने उद्देश्य और चरित्र को प्रकट कर दिया। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, मत्ती 10:32। और अब स्वयं अपने द्वारा उस उपदेश को दोहरा रहा था। जब मसीह उत्तर दे रहा था तो हर एक कान उसकी सुनने और हर एक आंख उसके चेहरे पर लगी हुई थी। उसने कहा, तूने आप ही कह दिया। और इससे आगे जब और कुछ कहने लगा तो उसके पीले पड़े चेहरे पर ईश्वरीय चमक फैल गई। उसने आगे कहा, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। महायाजक यह सुनकर बहुत घबरा गया कि उसे भी परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। परंतु उसने परमेश्वर की निंदा की। महायाजक कहने लगा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी। क्या समझते हो तुम सब? और वे सब लोग कहने लगे, मसीह ने निंदा की है और वह मृत्यु के योग्य है। क्रोध और पुराग्रह ने कायफा को इस राह पर चला दिया जिस पर वह चल पड़ा था। एक महायाजक ने अपना राजकीय परिधान को फाड़ डाला। यह उसे नहीं करना था। यह पोशाक, यह पहनाव उसका परमेश्वर के साथ उसका पवित्र संबंध को भी दिखाता था। एक याजक को जो भी पहनना था वह सब संपूर्ण तथा दोष रहित होना चाहिए था। जब कैफा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले तो यह कार्य इस बात को प्रकट कर रहा था कि इसके बाद यहूदी एक चुनी हुई जाति के रूप में अधिकारी नहीं होंगे। प्यारो, कभी कभी यह ख्याल दिल में आता है कि यीशु मसीह जो निर्दोष था उनको इन याजकों के सामने क्यों लाया गया? ये याजक महायाजक खुद निष्पाप निष्कलंक नहीं थे, लेकिन यीशु तो निर्दोष था, निष्कलंक था, परमेश्वर का मेमना था जो जगत का पाप और हमारा पाप उठाने के लिए आया था, और यीशु मसीह उनके सामने निष्कलंक निकला। आइए हम यीशु मसीह को एक निष्कलंक परमेश्वर का मेमना मानकर ग्रहण करें कि हम उस विश्वास करके हम उद्धार पाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। अभी जो कुछ हम लोग सुने हमें ग्रहण करने दे प्रभु यीशु मसीह को, कि तेरा निर्दोष मेमना है जो हमारा उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आया और दुख सहा, वही हमारा एकमात्र उपाय है पिता। हम उसे स्वीकार करें और तेरे रास्ता में चले, उसे ग्रहण करें और उद्धार पाए। हम सबों को तो आशीषित कर, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन।
जहाँ की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक
हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।